الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله فرمان اخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سے حاضر ہم اپنا سلسلہ شعور لے کر۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکون۔ جی ہاں، سکون کے لفظی معنی میں اگر جائیں تو یہ لفظ سکن سے نکلا ہے اور اس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں اور راحت کے ہیں۔ اس دور میں ہر ایک شخص سکون کا متلاشی ہے۔ جی دیکھا جائے تو دولت ہونے کے باوجود، شہرت اور منصب ہونے کے باوجود ایک بے سکونی سی کیفیت ہے، راحت تو چین نہیں، دل ہے کہ اداس ہے، دماغ ہے کہ پریشان ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آج اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے گیسٹ سپیکر ہیں آج مرکزی مجلس شورا کے رکن اور کراچی ریجن کے نگران قبلہ حاجی امین اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
کیسے سر، خیریت سے ہیں؟ مزاج
گرم بخیر۔ رب العالمین، علی کل حال۔
شعور بیسیکلی ہمارا پروگرام ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے سکون، اور اس پر ہم نے کچھ آج چیزیں پلان کی تھی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کراچی ریجن کے نگران بھی، اور بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ پبلک انٹریکشن آپ کی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو انوائٹ کریں۔ سر، سکون کے حوالے سے ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی کہ دیکھا جاتا ہے کہ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، منصب بھی ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک بے چینی سی کیفیت ہے، اضطراب ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز سے آپ فراغت حاصل کرتے تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سکون کیا ہے اور یہ کہاں سے انسان کو حاصل ہو؟
آپ نے اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن جو بیان کی نا سکن کے حوالے سے،
جی،
تو ایک بڑی پیاری اس کا خلاصہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اگر ان حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے مطمئن ہو جائیں اس پر،
واہ،
تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی آپ کو ساری نیڈز پوری کر دیتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک جملہ بچپن سے پڑھتے تھے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے، یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ جناب اگر موٹر سائیکل مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا،
جی،
تو آپ موٹر سائیکل والے سے پوچھ لیں تو کہے گا نہیں یار گاڑی چاہیے یار۔ اچھا پھر چلے گاڑی والے سے پوچھ لیں،
ٹھیک ہے،
تو گاڑی والا کہے گا یار میری تو شادی ہے، ایئر کنڈیشن چاہیے۔ اچھا ایئر کنڈیشن والے سے پوچھیں تو پھر ان کی وہ سی سیاں شروع ہوتی ہیں کہ بھائی اپنی تو اتنی سی سی ہے، اتنی سی سی چاہیے۔ اچھا کوئی ٹاپ سی سی والے کو بھی پوچھ لے کہ بھائی اب اچھی بڑی گاڑی مل گئی اور بڑی زبردست سی سی بھی ہے تو کیا اس پر، کہنا نہیں یار 2021 ہے، 2022 چاہیے۔
صحیح،
تو اگر ہم جس حال میں ہیں اس حال میں اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیں نا کہ یار بس یہی ہے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کو اسٹیبل کر دیتی ہے۔
ماشاءاللہ، بڑا ہی کنسائز اور پریسائز آنسر کہ ہم چونکہ انسان انلمیٹڈ نیڈز اور وانٹس کے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ انلمیٹڈ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت زبردست ایک بریف آنسر تھا کہ جو چیزیں آپ کو میسر ہیں اگر اس پہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈجسٹ ہو جائیں، اس سے ہی آپ ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے سکون کا باعث چیز ہو سکتی ہے۔
امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو سمجھانا چاہتے ہیں نا تو کوئی سٹوری یا کوئی ایسی بات سمجھاتے ہیں۔ تبھی گفتگو کے دوران مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار جو فلاں وزیر ہے نا یہ بڑا مطمئن نظر آتا ہے، جب دیکھو یہ خوشی خوش رہتا ہے، اس کو ٹینشن کبھی، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا ایزی رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اس پہ 99 کا قانون لگائیں نا پھر یہ چیک ہوگا کہ یہ سکون میں رہتا ہے کہ نہیں۔ تو کہا 99 کا قانون کیا؟ تو اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ 100 اشرفیاں ایک تھیلی میں رکھیں اور اس میں لکھیں کہ یہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو پیک کر دیں، ایک نکال لیں وہ 99 ہو جائیں گے۔ अब ये पैक करके रात को किसी वक्त में जाकर इसके दरवाजे पर रख दें और नॉक करके अब छुप जाएं, बस आप देखें फिर क्या होता है। बादशाह ने यही करवाया, 100 अशरफियों की थैली ली, उस पर लिखा कि ये आपके लिए गिफ्ट।
सही।
अब उसमें से एक निकाल कर उसको सील कर दिया। अब इसने दरवाजे पर रखवाया, रात को नॉक किया। अब रात को किसी पहर में इस तरह नॉक हो तो वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला। अब इधर उधर देखा तो कोई नहीं, नीचे देखा तो थैली नजर आई। जैसे उठाई तो उस पर लिखा था आपके लिए गिफ्ट, और तो बहुत खुश हुआ। जो बच्चे बीवी सो रहे थे सबको जगाया, भाई किसी ने गिफ्ट दिया है। अब एकदम वो सील खोल के देखा तो अशरफिया। अब अशरफिया काउंट की तो 99, तो एक दो दफा उसने खुद काउंट की दोबारा तो 99। बीवी से कहा कि तुम काउंट करो, तो बीवी ने गिनना शुरू किया। उसने कहा 99 नहीं, तुम्हें गिनना नहीं आता, तुम गिनो। अब बच्चों को एक को बुलाया, दो को बुलाया, वो सारा गिनते रहे। क्या लगता है एक बाहर गिर गई है। अब ये रात को निकले, कोई लालटेन कोई मोमबत्ती ये लेकर और ढूंढने लगे जनाब कोई झाड़ियों में। ओ, अच्छा ये शोर मचा रहा है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, जरा इधर देखो, ये पत्ते हटा के देखो ये। अब वो सारी रात जो है ना वो एक अशरफी ढूंढते रहे। अब जैसे सुबह हुई तो वो बंदा जो फ्रेश फ्रेश आता था, आज जो आया ना तो उसको तो थोबड़ा सजा हुआ है बिल्कुल, आंखें लाल, टेंशन ही टेंशन। तो बादशाह ने वजीर को देखा, वजीर ने कहा के
देख लिया
99 का कानून। तो बादशाह ने कहा मेरी समझ नहीं आया कि 99 का क्या कानून।
सही।
तो उसने कहा बादशाह सलामत, इसको अशरफिया मिली 99, लेकिन इसने 99 अशरफिया मिलने की खुशी नहीं मनाई।
अल्लाह।
इसने उस एक का टेंशन लिया जो इसको नहीं मिली। नतीजा वो 99 की जो लज्जत लेनी थी ना, वो लज्जत ही नहीं ले सका। अगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करें, भाई आप के घर में मतलब जो भी है बेसुकूनी किस चीज की है
जी?
भाई यही है ना कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो मुआशरे में मुझसे भी नीचे का तबका मिलता है।
सही।
ऐसा नहीं है कि मैं ही परेशान हूँ, भाई सब परेशान, एक से एक परेशानी है। मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, तो क्या शादी होकर सुकून में आ जाता है? नहीं। आप पूछे कितनी ऐसी हैं जो अपने घर में माँ के घर में बैठी हुई आकर टेंशन है ना
जी।
अगर औलाद का मामला है, मेरे औलाद नहीं है, जिनके औलाद है वो अपनी औलाद की वजह से भी परेशान है। कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, तरह तरह की मसाइल हैं। एग्जैक्टली यही है कि जो चीज आपको मिली है ना, इससे टेस्ट लें, आप देखेंगे मजा ही मजा है।
क्या बात मनीष जी, आज बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं कि स्टोरी कोर्ट की हमारे रुकनीशुरा ने। इसी के साथ भाई साहब मुझे मौलाना रूम की एक शिकायत याद आती है, जिसमें मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक गाय थी, जंगली गाय, जो कि रोजाना जंगल में घास खाने के लिए निकल जाती थी सुबह के वक्त, और सुबह से लेकर जो भी उसका वक्त होता था दिन या शाम से पहले पहले पेट भर कर वो घास खाती थी, सर सब्जो शादाब, मतलब एक माहौल और फ्रेश फ्रेश घास उसे वहां पर खाना खुराक में असर आता था। अब जब वो खाकर घर वापस लौटती थी, मतलब जो उसकी जगह थी वहां पर वापस लौटने के बाद वो पूरी रात इस फिक्र में गुजारती थी कि कल सुबह क्या होगा, कल सुबह मुझे ये फ्रेश घास मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, मतलब कि ऐसा ना हो कोई मजीद कोई जानवर जाकर वो खा ना जाए। पूरा दिन वो उसके फिक्र में गुजरता था, और उससे क्या होता था कि सुबह तक उसकी कैफियत वो दिखने में बड़ी सूखी सी महसूस होती थी, जिसने सुबह तो बड़ा पेट भर के खाना खाया। और ये सिलसिला दूसरे दिन भी इसी तरह चलता रहता, तीसरे दिन भी। तो पता चला, देखने को ये मिलता है अगर इससे हम कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन हम इससे नसीहत यूं लें कि यहाँ पर गाय से जो मुराद है वो इंसान की नफ्स है, और जंगल से जो मुराद है वो ये दुनिया है। कि बेसिकली हमारा नफ्स भी तो सेटिस्फाई नहीं होता जी साहब, कि अब अपने हाल को बर्बाद करते हैं मुस्तकबिल की बेसिकली सोच फिक्र लेकर। अच्छा, इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप के साथ एक बड़ी तादाद इंटरेक्शन में रहती है, अक्सर आप मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हमने क्या आप ये नोट नहीं करते कि मुस्तकबिल को लोग इंजॉय नहीं करते बल्कि फ्यूचर के हवाले से काफी ज्यादा वरीड होकर अपना हाल भी खराब कर लेते हैं, और फ्यूचर तो उनके सामने है नहीं फिलहाल।
जो अपनी नीड्स हैं, जो मेरी मेरे नसीब और मेरे मुकद्दर में है
जी,
ये मदनी चैनल के नाजरीन, ये ऐसा नीट एंड क्लीन मामला है कि इस मामले में जो कुरान और हदीस में जो बातें कोट की गई है ना
जी,
जैसे बड़ी मशहूर आयत का एक जुज है, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा, जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। ठीक है, अब जब कुरान में ये फरमाया गया, और हम ये देखते हैं आजकल पानी का मसला चला हुआ है, आप नीचे बोरिंग करें 200 फीट नीचे आप जाकर जब मट्टी निकालते हैं उसमें कीड़ा
अल्लाह
है, अब इस 200 फीट नीचे इस कीड़े को रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह। शार्क मछली 2500 से 3000 किलो गोश्त खाती है,
फिल्म जी,
ठीक है। अब आप बताएं कि इसको डेली गोश्त कौन खिलाता है? अल्लाह। हम घर से निकलते हैं शाह साहब, घर से निकलते हैं, चाय पराठा खा के अंडा खा के जैसे निकलते हैं, घर से टिफिन मिलता है
जी
कि दोपहर में खाना है, ये हमारा एक रूटीन होता है ना घर उमूमन लोगों का। अब आप बताएं कि जो एक परिंदा जब घोंसले से उड़ता है,
अल्लाह,
क्या कभी देखा है उसकी उसकी पाँव में कोई पोटली बंधी हुई हो कि दिन भर क्या खाएंगे? ये कीड़े मकोड़े, ये परिंदे, बल्कि मुर्गी के मुतालिक तो अमीर सर बड़ी जबरदस्त बात कोट करते हैं, क्या मुर्गी को पानी पिलाएं, ये पानी पीकर वो कटोरी गिरा देती है। अब इससे पता ये चलता है कि मुर्गी का तवक्कुल कैसा है,
अल्लाह,
कि अभी प्यास लगी तो अल्लाह ने पानी पिलाया,
वाह,
दोबारा प्यास लगेगी फिर रब ताला पानी पिलाएगा।
क्या
पानी पिलाने की ड्यूटी किसकी? इंसान की लगती है कि भाई तू भर इसके कटोरी को।
खूबसूरत बात है।
तो ये असल में उमूमन है यही कि हम अगर बेसुकूनी का जो मामला आता है ना वो है यही कि इस तरह की जो मामला, वही बात के जो मुझे मिला मैं काय का टेंशन लूं
जी।
एक बहुत पुरानी स्लाइड है, जो हम कभी अपने इलाकों में होते थे तो हमारे साथ दीनी काम करते थे, काफी अरसे बाद मुझे मिले, आई थिंक 18-20 साल बाद मिले होंगे, और मैं बड़ा खुश हुआ, मैं मुलाकात की, मैं भाई कैसे है? अच्छा उस टाइम तो ये जवान थे सारे, तो बहरहाल मुलाकात हुई तो फिर वो रोना धोना शुरू, क्या दुआ करें यार, तो यूं है, तो बच्चे की जॉब नहीं हो रही, तो यूं है। अच्छा मैं सोचूं यार, ये तो जब मेरे से मिला था तो शादी भी नहीं हुई थी, तो बच्चा होगा तो कितना बड़ा होगा? तो मैंने कहा बेटी की उम्र कितनी है? तो कहा 16 साल। बेटी की शादी की भी बड़ी फिक्र है। मैंने कहा कितनी उम्र है? 13 साल। फिर मैंने इसको बिठाया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम 16 साल की उम्र में खुद कितना कमाते थे? हर एक ही एज होती है। भाई अगर मैं अपनी एज पर आकर सोचूं कि भाई अगर मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, मेरा बेटा क्यों नहीं कमाता? भाई आपकी उम्र 50 साल हो गई, ये 15 साल का है, कैसे जॉब भी करेगा तो इसको तजर्बा का है
जी।
बेसुकूनी है घर में, ऐसी बेसुकूनी होती है मदन चरण के नाजरीन। वाकई इस मामले में निकले, अपने आप को निकालें हमसे, जैसे शाह साहब ने कहा ना, वाकई हम इस फील्ड से लोग दुआएं कराते हैं। एक स्टाइल में बार बार मुझे ऑफिस में यूं झांक झांक के देख रहे थे, मैं समझ गया कि शायद इसको कोई काम है। मैं बाहर निकला और उससे मैंने मुलाकात की, मैंने कहा खैरियत, कुछ काम है? कह रहे आपसे मिलना था। मैं कहा फरमाए। कह रहे मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? कहा बस बस बहुत रोना आता है। क्यों रोना आता है? कहा मेरी अम्मी भी बहुत रोती है, मेरे अब्बू भी बहुत रोते हैं। मैंने कहा भाई मसला क्या है? बात तो
जी जी।
कह रहे वो बहन का रिश्ता नहीं आ रहा ना, इसलिए रो रहे। अब मैंने ये सारी बातें सुनकर उसको कहा कि भाई जिस बहन को ये पता हो कि मेरी वजह से मेरा भाई भी रोता है, मेरी वजह से मेरी माँ भी रोती है, मेरी वजह से मेरा बाप भी रोता है, आप बताएं कि किसी दिन वो पंखे भी नहीं मिलेगी अगर मजहबी जहन ना हो तो? माहौल क्यों बनाते हैं? अगर हम ये समझते हैं कि चूंकि हमारे पास जहेज नहीं है, चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए रिश्ते नहीं आते। मैं आपको लिस्ट देता हूं ऐसे मालदारों की जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो दुआ कराते हैं कि दुआ करो हमारी बेटी का रिश्ता आ जाए।
अल्लाह।
पता चला ये सब नसीब और मुकद्दर के खेल हैं। हम काहे का टेंशन लेते हैं? किस चीज का टेंशन है हमें? मुकद्दर के जो मामला आते हैं ना, ये अल्लाह पे छोड़े जाए।
क्या बात है भाई, कितनी खूबसूरत बात किया है सबने। और हकीकत देखकर देखा भी जाए, अगर हम माजी के मेहराबों में नजर डालें तो अगर हम देखते हैं कि दौलत और शोहरत से अगर सुकून हासिल होता है तो फिर कारून तो अपने कह सकते हैं कि दौलत के साथ ही गर्क हुआ, और इसी तरीके से अगर हम हुकूमत और ताकत की तरफ देखें कि हमें कोई मनसब मिल जाए तो फिरौन और नमरूद की मिसाल हमारे सामने है, और अगर हम शोहरत की तरफ देखते हैं तो आज अबू जहल को कौन नहीं जानती। लेकिन बात यह कि आप बुक गुड बुक्स में हैं या नहीं। अमीन भाई अभी गुज़श्ता दिनों मैंने एक क्लिप देखी अमीर अहले सुन्नत की, जिसमें हुज्जाजे किराम जो हज से जो वापसी हुई उनसे मुलाकात फरमाई अमीर अहले सुन्नत ने, मैंने एक चीज उसमें नोट की। यकीनन हज की सआदत हासिल होना और फिर मदीने पाक की हाजिरी, और वहां से यकीनन लौटने के बाद वो एक कैफियत होती है, तो यकीनन दिली तौर पर इत्मीनान तो हासिल होता है कि जब एक आशिक जब उस बारगाह में हाजिर हो। लेकिन अभी उसने एक वर्ड वहां पर यूज किया कि मैं आपसे ताजियत करता हूं। अब ये मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये वो क्या कैफियत है।
मदीने पाक की हाजिरी जो है ना, ये बड़े मुकद्दर और बड़े चाहतों से मिलता है सफर, क्योंकि ये वाकई ऐसा सफर नहीं है कि अगर कोई कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। नहीं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब जब वो बुलाया तो जो वहाँ की जो मदीने पाक के जो अय्याम है ना, और वैसे भी जनरली मदनी चैनल के नाज़रीन, आप कोई भी दीनी इज्तिमात में आए और आप कभी भी जैसे मदनी मुज़ाकरा आप देख रहे हैं, मदनी चैनल देख रहे हैं, ये एक उसूल है। जैसे आपने तमहीद तो बांधी थी शुरू में, मुझे इससे आगे अमीर अहले सुन्नत की बात याद आ गई थी। आपने एक जुमला कहा था शुरू में कि हर फर्द हर शख्स परेशान है, बेसुकूनी है
जी।
अमीर अहले सुन्नत ने एक जगह ये लिखकर कहा कि सुकून कहाँ मिलेगा, जुमला क्या कोट किया, सुकून कहाँ मिलेगा, आइए अल्लाह के सच्चे कलाम से रहनुमाई ले, कि ए रब के सच्चे कलाम तू ही रहनुमाई फरमा कि आखिर ये सुकून कहाँ मिलेगा। तो कुरान पाक में जब देखा तो लिखा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है।
वाह
है, अब ये जो अल्लाह का जिक्र जो है, इसकी डेफिनेशन जो उलमा ने लिखी है वो ये नहीं कि तस्वीर लेकर अल्लाह 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 की जो जरबे लगाए वो जिक्र है, ये भी जिक्र है, मगर दीनी महफिलें, दीनी इज्तिमात, इल्म दीन सीखने के हल्के, जैसे दावत सामी का हफ्ता और इज्तिमात हैं, मदनी मुजाकरे हैं, आप मदनी काफिले में सफर करते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप देखें कि जितना टाइम आप इसमें गुजारें
जी,
यूं लगता है जैसे आपको खोई हुई चीज मिल जाएगी। क्योंकि जब ये बेसुकूनी होती है ना हमारे यहाँ, चूंकि सोहबत गलत है
जी,
किसी ने आप मशवरा दिया कि शराब पिया करो
जी
सुकून मिल जाएगा, कोई कहता नशा करो सुकून मिल जाएगा, क्लब जाओ सुकून मिलेगा। अब जब ऐसे माहौल में जब बढ़ता है ना आदमी, तो कोई शराबी बन जाता है, कोई नशे करता है, ये सब करने पर भी सुकून थोड़ी मिलता है, सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। बंदा जब ऐसी महाफिल अटेंड करता है वो गुम हो जाता है, उसको टेंशन फ्री हो जाता है, बीमारियां भूल जाता है। मैं जाती तौर पर शाह साहब ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती थी, दावत इस्लामी के मदनी काफले में सफर किया कर रहे बगैर गोली के सोया हूं मैं।
वाह वाह,
मेरे यहाँ बेड बिछा हुआ है, एसी लगे हुए, मुझे उसमें नींद नहीं आती थी, लेकिन यहाँ तो फर्श पे चटाई बिछा कर इस्लाम मैंने सुलाया तो सो गए। ये ऐसा माहौल, ऐसी चीजें, और ये मदनी चैनल के नाज़रीन सबको जरूरत है, क्योंकि हम जाहिर दिन भर जो भी हमारे मामलात होंगे वो जाहिर है ही ऐसे कि जिसमें हमें ये मामलात रहते हैं, रह रह कर एक बात हुक उठती है, यार कैसे होगा, बच्चों की तरबियत कैसे होगी, तो ये कैसे होगा, इजी हो जाए। अल्लाह ने वादा फरमाया ये सब मसाइल हल हो जाएंगे, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आप ठीक है, अगर आप किसी दिन गाड़ियों में घूमते थे, कोई क्राइसिस आ गया, आप नीचे आ गए, आप क्यों अब टेंशन में, इंशाल्लाह वक्त आएगा फिर गाड़ियों में घूमेंगे। और ये वक्त देखा है, देखा है, टॉप लेवल से नीचे जमीन पर आ गया, फिर कोशिश की फिर चढ़ गया, मामूली से जानवर कीड़े चींटियों को देखें, चढ़ती है गिरती है। हर मुश्किल के बाद आसानी, और फिर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आज के जो हालात हैं, जिसमें ज़ाहिर है टॉपिक ज्यादा फील कर रहे होंगे, ये जो हालात हैं
जी, जी,
क्या ये हालात हमेशा रहेंगे, नहीं, वक्त गुजर जाएगा। यानी आप देखें शाह साहब, अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, एक तो मुस्कुराता चेहरा
माशाल्लाह,
ठीक है, परेशान एक से एक आते, सवालात एक से एक करते, आप यकीन माने वन सेंटेंस सुनकर उसका टेंशन उड़ जाता है। कैसे, एक ने सवाल किया, अभी हजरत साहब आजकल बड़ी महंगाई है, आप बताएं इस महंगाई में हम गुजारा कैसे करें। तो पहले तो उसका वो आदमी जब सवाल करता है तो वो वैसे ही मुंह बनाकर करता है कि मतलब सवाल में जैसा असर ही नहीं होगा, तो वो बड़ा उदास सा और चेहरा यूं। अब जैसे ये सवाल हुआ ना मदनी चैनल के नाज़रीन, तो अमीर अहले सुन्नत की सबसे पहले तो स्माइल, खूबसूरत प्यारी सी स्माइल, मुस्कुराकर उसको देखा, फिर कहा कि प्यारे भाई, जो रब हमें सस्ताई में खिलाता था वही महंगाई में खिलाएगा।
क्या खूबसूरत बात है,
एक जुमले, अच्छा जैसे ही जुमला कोट किया ना, आप यकीन माने मदनी चैनल के नाज़रीन कि वो शख्स जो परेशान था उसने एकदम से अपना रिस्पॉन्स दिया, मुस्कुरा गया। फिर उसको फरमाया कि भाई बचपन में मैं मुर्गी लेने जाता था, कल मैंने 125 रुपए बताई थी, 125 रुपए की मुर्गी लेकर आता था, और घर में जब लागता था तो घर में यही बातें होती थी कि महंगाई हो गई है। जानवर लेने जाते थे कुर्बानी का, है जो
जी,
बड़ा
जी।
जानवर होता है तो वो 500-550 रुपए का आता था,
सही,
तो उस वक्त भी बातें होती थी महंगाई हो गई है। तो ये कब नहीं है माशरे में, सब है, ये रूटीन का एक हिस्सा है। और हम भी अगर अपने बचपन में भी देखें तो हमें याद है जितनी सस्ताई थी पेट्रोल का, दीगर जो भी मामला थे, आसानियां, और फिर एक और सवाल किसी ने किया, हुजूर मेरे 6 बच्चे, कमाने वाला अकेला हूं, कैसे पूरा होगा? फिर वो इस्माइल, फरमाया जिसको खिलाना पिलाना तेरे जिम्मे ने उसको घर से निकाल दे। अब जैसे ये जुमला सुना तो एकदम से वो मुस्कुराने लगा कि वाकई बात तो सही है यार, खिलाना पिलाना मेरे जिम्मे थोड़ी, रब खिलाता पिलाता है,
बेशक।
काहे का टेंशन, किस चीज का टेंशन? यानी वो बात जो शुरू में हमने बात कही, आप अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा मुतमईन रहे, क्योंकि जो खूब से खूबतर की तलाश में जाता है ना, वो जो भी इसकी शरी तकादे हैं वो जाता है, वो जाए, मगर जो आपकी मौजूदा जो प्रेजेंस है, एक पढ़ा था एक जगह, एक शख्स जॉगिंग कर रहा था दरिया के किनारे, अब उसने दूर से देखा कि एक कश्ती खड़ी हुई है,
ठीक है,
और जो फिशरमैन है माहीगीर, ये टेक लगा के सिगरेट पी रहा था।
अच्छा,
अब ये बड़ा आदमी था, यार बेवकूफ आदमी है, जब कश्ती भी है दरिया भी है तो जाए आदमी शिकार करे,
सही।
यही सोचते 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 वो भागता भागता जब इसके करीब आए तो रुक गया। उसको आवाज लगाई, भाई बात सुन, जब तेरे पास कश्ती है दरिया है तो मछलियां क्यों नहीं पकड़ता जाकर? तो उसने कहा मैं गया था पकड़ के ले आया मैं। तो कहा और पकड़ लो जाकर।
सही।
तो कहा और पकड़ के क्या करूंगा?
वाह।
कहा कि पकड़ के पैसे कमाओगे तो नायलॉन के तार ले लेना।
सही।
बड़ी मछलियां पकड़ लेना। तो कहा बड़ी मछलियां पकड़ के क्या करूंगा?
सही।
तो कहा बड़ी मछलियां पकड़ना, पैसे आएंगे तो बड़ा जहाज खरीद लेना, बड़े पानी में जाकर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना। तो कहा बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के क्या करूंगा?
सही।
उसने कहा अच्छा सा घर बना लेना। कहा अच्छा सा घर बना के क्या करूंगा? तो कहा घर बनाना, शादी करना, बच्चे होंगे, सुकून से जिंदगी गुजारना। तो उसने कहा अभी क्या कर रहा हूँ?
अल्लाह
क्या बात है, अभी क्या कर रहा हूँ भाई? जिस हाल में हूँ, अगर इस हाल में मैं खुश हूँ,
वाह,
मैं टेंशन किस चीज का ले रहा हूँ?
कमाल।
जो नसीब मुकद्दर में होता है ना सर, मिलता है वो। बस इस चीज को अगर जिंदगी का हिस्सा बना लेना, यकीन माने ये जो हसद है, ये जो आपकी जो एक दूसरे की खेचा खेची है कि ये आगे बढ़ गया ये नीचे बढ़ गया, ये नहीं है। हाँ, इस मामले में जो लिखा है किताबों में, जो तजर्बेकार लोग कहते हैं, वो यही है कि अपनी वैल्यू बढ़ाए। जैसे किसी ने आकर अपने उस्ताद से कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कंपनी जो है वो अपने मुलाजमीन को 20,000 रुपये सैलरी देती है, मेरा पूरा नहीं होता है। तो उसने कहा आप गलत कह रहे हैं। कहा नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी कंपनी अपने मुलाजमीन को 20,000 रुपये देती है, उसमें गुजारा नहीं होता है। तो उसने कहा थोड़ा जुमला सेट करें, आप जुमला सही नहीं कह रहे हैं। आप ये कहें कि मेरी कंपनी मुझे 20,000 रुपये देती है। आपकी कंपनी में 50,000 वाले भी होंगे, लाख वाले भी होंगे, 2 लाख वाले भी होंगे। मालूमात ये करें कि इसको 50,000 क्यों मिलते हैं, उसको लाख क्यों मिलते हैं, उसको 2 लाख क्यों मिलते हैं, तो पता चला गया वैल्यू बढ़ेगी उसकी। जैसे हमारे यहाँ आलिम बनना है, पढ़ाई करनी नहीं है तो कैसे आलिम बनेगा? इसी तरह अगर आपने किसी काम में भी तरक्की करनी है, अब दुकान खोलनी है
जी,
दुकान खोलने का टाइम 10 बजे मार्केट का, 12 बजे आ रहे हैं, वहां के आपने वीडियो गेम या कोई भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, कस्टमर आपके सामने से गुजर रहे हैं, आप कैसे तरक्की करेंगे? तो इन चीजों की बहुत सारी बातें हैं, अपने घर में भी, अपने मामलात में भी, अगर हम इजी हो जाएं और अल्लाह की रिजा पर राजी रहना सर, टेंशन आसानी हो जाएगी।
भाई साहब आपने आखिर में एक बात कोट की कि आलिम बनना है लेकिन पढ़ाई नहीं करनी, इस हवाले से भी हमारे एक आज के टॉपिक से रिलेटेड बड़ी रेलेवेंट माशाल्लाह एक हदीस पाक है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी आलिम का इंतकाल होता है, अल्लाह ताला उसके इल्म को उसकी कब्र में कोई शक्ल अता फरमाता है जो कयामत तक उसे सुकून पहुंचाता है। तो इल्म की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और यकीनन इल्म हाई सब मतलब के इसमें हम यू से रिलेट कर सकते हैं कि जब इंसान के पास इल्म होता है, यकीनन वो शऊर के मुकाबले में एक इलिटरेट पर्सन के यकीन उसके पास ज्यादा शऊर होता है। तो जो आपने भी यहाँ पर बात कोट की थी कि जब महंगाई थी या जब सस्ताई थी, जब इन्फ्लेशन नहीं था, आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल वही इनकम थी तो उस वक्त यकीनन आपके हैंगआउट ज्यादा हुआ करते थे, आपकी शॉपिंग ज्यादा हुआ करती थी। आज एक सोशल मीडिया पे हमने एक पोस्ट देखी बड़ी जबरदस्त, किसी ने तवज्जो दिलाई कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बच्चे चूंकि इन चीजों को नहीं समझते, उनकी तरफ से नीड्स और उनकी डिमांड्स काफी ज्यादा होती हैं। अब यकीनन कोई बच्चा आता है, अभी सेशन का आगाज होने वाला है कि हमें नए बैग्स चाहिए, हमें न्यू ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, हमें न्यू लंच बॉक्सेस चाहिए, हमें यूनिफॉर्म नए चाहिए। अमूमन नए सेशन में हमारी भी यही प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। तो किसी एक शख्स ने तवज्जो दिलाई कि आप कोशिश ये करें कि बच्चों को समझाएं। कि किसी तरीके से उन्हें उनकी जहन साजी करें कि बेटा यू हैव टू मैनेज विद दीज रिसोर्सेज, अभी चूंकि इन्फ्लेशन है, जो भी इस तरह के मामले आते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल नई चीजें ले भी रहे हैं तो वो पुरानी चीजें किसी मुस्तहिक बच्चों को आप दें, ताकि इससे क्या होगा कि मौसमिक बैलेंस। किबला मेरे रसूल ने फरमाया पिछले दिनों कि अगर हर शख्स अपनी ज़कात प्रॉपर अंदाज से, ईद के सिलसिले के दिनों की बात है, कि अगर हर शख्स अपनी मालदार शख्स ज़कात प्रॉपर देने लगे तो ये पॉवर्टी वाला मामला, ये गुर्बत वाला मामला नजर ना आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम अपने रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं भले उसके अंदर ही अपने को मैनेज करना सीख लें, अपनी बिला वजह अपनी नीड्स और डिमांड्स को ना बढ़ाएं। तो इससे किसी हद तक हम अपने जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर बेहतर अंदाज से स्पेंड कर सकते।
सर आपने जो भी एक बात कही ना, मैं आखिर में ये बात जरूर कोट करूंगा कि ये जो आपने इल्म सीखने की बात की, या जैसे अच्छे माहौल में दावत इस्लामी के माहौल में अगर कोई अपना हिस्सा बनाता है, और जब ज़ाहिर इस्लाम का जो एक बड़ा प्यारा हुसन है कि हेल्प करना,
वाह
है ये सब, तो मुझे एक बात याद आई कि किसी बुजुर्ग से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर ये सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, क्या करें इसका। अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी शानदार होती है। तो कहा बेटा सुकून की तलाश छोड़ दे, तू दूसरों को सुकून देना शुरू कर, तुझे सुकून मिल जाए।
वाह,
ये एक जनरल फार्मूला है। आप अपनी लाइफ में जहां जहां सुकून प्रोवाइड करेंगे ना
जी,
आपको सुकून मिल जाएगा।
मजल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म की तरफ पहुंचता है। सुकून इंसान के अंदर होता है, जैसे आज हमने फरमाया कि जो शख्स अंदर से खुश होता है वो अपने बाहर वालों के लिए भी ऐसे ही अजबाब और ऐसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। यूं देखा जाए तो अगर हम सुकून और इत्मीनान कल्ब की बात करें तो ये इंसान के अंदर अपने अंदर ही पोशीदा होती है। हमने दरियाओं को चीर दिए, पहाड़ों के दामन कह सकते हैं कि उखाड़ दिए, लेकिन अपने कल्ब के इत्मीनान के लिए अगर हमने नहीं देखा तो अपने कल्ब की तरफ हमारी नजर नहीं गई और हमें हमने वो शऊर हम अपने अंदर बेदार ना कर पाए। तो यकीनन हमारी कोशिश है कि अपने इस तरफ मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, जिस तरह आज हमारा प्रोग्राम जो शऊर इसमें टॉपिक था सुकून, इस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम हमारा हुआ था बामकसद जिंदगी के ऊपर, ऐसे कुछ टॉपिक्स जिसको हम इस्लामिक टीचिंग, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में और बुजुर्गान दीन की हिकायत और उनकी बेसिकली जो जिंदगी के प्रैक्टिसेस थे उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, उन चीज़ों को सामने रखते हुए, उन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर हम आप तक शऊर और आगाही पहुँचा सकें। आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर रब तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इखलास के साथ रियाकारी से बचते हुए। मदनी चैनल देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
या रब मेरे मुझे ऐसा शऊर।